તારીખ 6/5/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 27.
સ્વાધ્યાયમાં સ્વલક્ષથી પરિભ્રમણની વાત આવે તો કયા પ્રકારથી સ્વલક્ષથી, એટલે કે પોતાના આત્માને લક્ષ્યમાં લઈને આ વાત વિચારવી. હિન્દીને લીધો દોપહેર કે પ્રવચન મેં સ્વલક્ષ્ય સે પરિભ્રમણ કી ચિંતના કે બાત ચલી થી તો ઉસમે અપને આત્મા કો લક્ષ્ય મેં લેના હૈ, દૂસરા કિસી કો લક્ષ્ય મેં લેકર કે એસા વિચાર નહીં કરના હૈ. हमारे आत्मा ने अनंत काल से परिभ्रमण किया है और वो कैसे मिटे इसकी चिंतना हमको हमारे लिए करनी है. इस प्रकार से स्वलक्ष्य की बात थी. परिभ्रमण के दुख की जो बात आई उनको उसको प्रयोग साथ लेने से, प्रयोग के साथ लेने से किस प्रकार का फोर्स आता है यह समझाइए. यहाँ तो विचारना की भूमिका है, चिंतना में अभी प्रयोग की भूमिका नहीं है. प्रयोग की भूमिका आगे जाकर के शुरू होती है. मुमुक्षु के प्रारंभ के स्टेज में सुविचारणा होती है और सुविचारणा से मुमुक्षु आगे बढ़ता है तो फिर प्रयोग के स्टेज में आता है. तो यहाँ एकदम प्रारंभिक बात है, उसमें परिभ्रमण की चिंतना, परिभ्रमण का अभाव करने की चिंतना को नास्ते से विचारना है और आत्मकल्याण होना को अस्ति से विचारना है. तो उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल साइड से इस बात को लेना हो तो उस प्रकार से ले सकते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारा लक्ष्य आत्मकल्याण का रहना चाहिए. तो रहता है कि नहीं रहता है, इसका हम हर कार्य में ख्याल कर सकते हैं. जैसे कृपालु देव का एक पत्र है कि खाना है तो आत्मार्थ है और उपवास करना है तो भी आत्मार्थ है, सोना है तो आत्मार्थ है, नहीं सोना है तो भी आत्मार्थ है, बोलना है तो आत्मार्थ है, मौन रहना है तो भी आत्मार्थ है. ऐसे हर कार्य में हमारा आत्मकल्याण का लक्ष्य रहता है तो उसमें एक विचारणा के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल साइड यहाँ से शुरू हो सकता है, उतना यहाँ प्रकार बन सकता है अधिक से अधिक. ये दो प्रश्न आए हैं, और कोई प्रश्न हो तो बताइए. एक बात अवश्य है कि आत्मकल्याण की चिंतना वो चैतन्य की चिंतना है और वर्तमान उदय और संयोग की चिंता वो जड़ की चिंतना है. जिसको जड़ की चिंता है उसको चैतन्य की चिंता नहीं होगी। और जिसको चैतन्य की चिंता है उसको जड़ की चिंता मिट जाएगी। अब आपको पसंद करना है, जड़ की चिंता करने वाले को चैतन्य की चिंता नहीं होती तो उसका परिभ्रमण चालू रहता है। जिसको चैतन्य की चिंता हुई उसको जड़ की चिंता मिट जाएगी। दो प्रतिपक्ष में है, किसकी चिंता करनी है तब हमको पसंद करना है, बस उतनी सी बात है। इसमें है 807 एक बात तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस प्रकार से विचारना या अभिप्राय में लेने योग्य है कि ज्ञानी जब व्यक्तिगत कभी किसी को पत्र लिखते हैं या व्यक्तिगत बात करते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसी व्यक्ति के लिए ये वो बात हो और सारे समाज के लिए ये बात नहीं भी हो। तो ये 807 नंबर का जो पत्र है वो लल्लू जी स्वामी को लिखा गया है। वो स्थानकवासी संप्रदाय के साधु थे और कृपालु देव के परिचय में आने के बाद कुछ दुविधा में भी आए, क्योंकि उनका विरोध हुआ कि आप गृहस्थ को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अनुसरण करते हैं, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में साधुपना तो था नहीं और लोग ऐसे मानते नहीं, लोग तो वेश को देखते हैं, वेश को देखते हैं। तो फिर कभी ऐसा भी विकल्प आ गया होगा कि हम ये वेश को छोड़ दें। अब जहां तक वेश में होते हैं, समाज त्यागी को त्यागी के वेश में देखकर उनको आहार पानी देते हैं, पर जब त्यागी का वेश छूट जाता है और गृहस्थी का वेश वो पहन लेता है तो समाज उसको आहार पानी नहीं देगा। तो फिर उसको आहार पाने के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, लौकिक व्यवसाय में आना पड़ेगा। तो कोई वेश त्याग करके गृहस्थी होकर के लौकिक व्यवसाय में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या निवृत्ति में रहकर धर्म साधन करना चाहिए? कई प्रकार के विचार उसमें उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे दृष्टिकोण से भी इस पत्र में लिखा गया है कि दीक्षा लेते हैं उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रकार के दीक्षाधारी साधु होने में दिखने में आते हैं। तो कृपालु देव ने देखा कि दिगंबर साधु भी शास्त्रोक्त तो चर्या नहीं पालन करते हैं। क्यों नहीं पालन करते हैं? कि शरीर बल उतना अभी नहीं है, ठंडी गर्मी के मौसम होती है तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडी होती है, तो मकान में रहते हैं दिगंबर साधु भी, जबकि साधु को जंगल में रहना चाहिए। मकान में रहना वो भी एक प्रकार का आश्रय ले लिया, तो जब साधु मकान में रहने लगेंगे तो उनके लिए मकान बनाएंगे लोग, तो उनके निमित्त से, उनके उद्देश्य से हिंसा तो होगी, जबकि साधु हिंसा करना कराना अनुमोदना के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन अभी इतना शरीर बल ही नहीं है किसी के पास, इसलिए लिखा है कि शरीर आदि बल कम हो जाने से सभी मनुष्यों से केवल दिगंबर वृत्ति से वर्त करके बाह्य चारित्र का निर्वाह नहीं हो सकता है, ऐसी परिस्थिति है। तो बाह्य चारित्र का निर्वाह शास्त्रोक्त प्रकार से भी नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञानी ने उपदेश की हुई मर्यादा पूर्वक, देखो ये कंडीशन रखा है, श्वेतांबर पने से मैंने कपड़े पहने हुए वर्तमान काल जैसे काल में चारित्र का, मैंने बाह्य चारित्र का निवृत्ति का, बाह्य चारित्र मैंने वहां निवृत्ति लेना है, निर्वाह करने के लिए जो प्रवृत्ति है वो निषेध करने योग्य नहीं है। क्या कहा? कि ज्ञानी ने उपदेश दिए हुई मर्यादा पूर्वक वो बात है, संप्रदाय में रूढ़िगत रूप से चलती हुई वो बात नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो उसमें कौन सी अनुचित बात है? मतलब कि लल्लू जी त्यागी के वेश में थे, श्वेतांबर साधु के वेश में थे, लेकिन ज्ञानी की आज्ञा में थे, तो उनको लिए वो जरूरी नहीं है तो गृहस्थी में आ जाए और व्यापार में लग जाए या शादी विवाह कर ले, वो कोई जरूरी नहीं है। वो उस प्रकार से बाह्य निवृत्ति में रहकर के बाह्य त्याग में उतना अल्प त्याग में रह जाए तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। जैसे कि गुरुदेव के जमाने में कई लोग ब्रह्मचर्य को अंगीकार करते थे, तो वो लोग शादी विवाह और व्यापार व्यवसाय में नहीं पड़ते थे, निवृत्ति में रह करके, निवृत्ति वही बाह्य चारित्र का यहाँ अर्थ कथन है, निवृत्ति में रह करके आत्म साधन करे तो अच्छी बात है, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति तो पाप की प्रवृत्ति है, आत्मकल्याण की प्रवृत्ति से तो वो कनिष्ठ है, तो अच्छी प्रवृत्ति को छोड़ करके कनिष्ठ प्रवृत्ति को अंगीकार करने का उपदेश ज्ञानी कहाँ से देंगे, कैसे देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए ज्ञानी ने उपदेशी हुई मर्यादा पूर्वक बाह्य त्याग में रह करके, भले ही सफेद कपड़ा पहना हो, दिगंबर वृत्ति नहीं, दिगंबर नहीं हुए हो, तो भी आत्मकल्याण करने में उसका निषेध करना नहीं चाहिए। और इसी बहाने वस्त्र का आग्रह करके दिगंबर व्रति का एकांत निषेध करना वो भी योग्य नहीं है, वो भी दिया है, लिखा है। और वस्त्र मूर्छादि कारणों से बाह्याचरण में, बाह्य चारित्र में, मैंने बाह्याचरण में शिथिलपना आ जाए वो भी कर्तव्य नहीं है, दोनों बात लिखा है। तो बहुत सेफ साइड से बात किया है, कोई एक शब्द भी अनुचित नहीं लिखा है,
है?
वो तो है कि लिखने वाले का अभिप्राय को नहीं समझे तो हम हमारी कल्पना लगाएंगे, हम मत के मंडन खंडन में पड़े हुए होंगे तो मंडन खंडन वाले दृष्टिकोण हमारे लागू हो जाएगी और हम कृपालु देव के को अन्याय कर बैठेंगे, ये बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिगंबर बाह्य चारित्र हो या श्वेतांबर यानी कपड़े पहने हो बाह्य चारित्र हो, देश काल अधिकारी योगे उपकार का हेतु है। देखो कितनी बात लिखा है, पात्रता के अनुसार इसका उपकार है। ध्रुव क्षेत्र काल भाव और वर्तमान पात्रता, ये सब का कोऑर्डिनेशन करके आत्मा को आत्महित होवे, यही दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए जहां ज्ञानी ने जैसा उपदेश दिया है उस प्रकार से प्रवर्तन करने में आत्मार्थ ही है, उस प्रकार से प्रवर्तन करने में आत्मार्थ ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्तमान जिनागम के जो श्वेतांबर संप्रदाय को मान्य है इसका निषेध किया है, वो निषेध कर्तव्य नहीं है, ये बात थोड़ी अखरती है लोगों को। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रमाणिक ग्रंथ था, ये बात कृपालु देव के अभिप्राय में बराबर थी, इसलिए 807 पत्र के आगे वाले पत्र में और पीछे वाले पत्र में अनेक मुमुक्षु को मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अनुरोध किया गया है, आज्ञा दी है कि आप इस ग्रंथ को पढ़िए। तो उनको उनके अभिप्राय को लक्ष्य में लेते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निषेध किया है वो बात नहीं है। अब बात रही श्वेतांबर दिगंबर विषयक जो है कि श्वेतांबर संप्रदाय को मान्य है ऐसे जो आगम है उसको उसका निषेध किया है, तो उसमें क्या है कि कृपालु देव ने श्वेतांबर आगम पढ़े थे, उसमें भी कोई कोई बात मूल चीज रही है, बाकी का बात अपने लगाया है ऐड कर दिया है, बाकी कितनी बात तो जो स्मरण में रही थी उन साधुओं को वो मूल बात भी उन्होंने रखी है। तो मूल बात को से हमारा संबंध है, मूल बात से हमारा संबंध है कि मूल बात तीर्थंकर देव की मूल बात क्या है। जैसे कि 12 अंग में पहला अंग आचार अंग है, तो वर्तमान में जो श्वेतांबर संप्रदाय में आचार अंग है उस आचार अंग के प्रथम अधिकार का प्रथम सूत्र क्या है, जो एगम जाने सो सबम जाने, तो उसमें क्या अनुचित है, वो तीर्थंकर देव की बात है, तो मूल बात उन्होंने रखी। तो उनका निषेध नहीं होना चाहिए, निषेध विकृति का होना चाहिए। और विकृति को देखे तो वर्तमान दिगंबर संप्रदाय में भी कई प्रकार की विकृतियां घुस गई है। इसलिए गुरुदेव ने जब सत्य बात का प्रकाश किया तो दिगंबर संप्रदाय ने उसका विरोध किया, किया कि नहीं किया। 98% से अधिक संप्रदाय के लोगों ने ये मूल दिगंबर तत्व का निषेध किया है कि कांजी स्वामी का मार्ग अलग है, जबकि कांजी स्वामी का कोई मार्ग नहीं था, वो मूल तीर्थंकर देव का मार्ग है, प्योर मार्ग था वो। तो इसलिए संप्रदाय को देखे तो एक भी संप्रदाय मान्य करने योग्य नहीं था। इसलिए गुरुदेव ने किसी भी श्वेतांबर दिगंबर साधु से गुरु तत्व का स्वीकार नहीं किया, किसी के पास नहीं गए, कृपालु देव भी नहीं गए थे। कृपालु देव भी एक भी श्वेतांबर आचार्य के दिगंबर आचार्य के पास नहीं गए, गुरुदेव भी नहीं गए। क्यों? ये विकृतियां बहुत आ गई हैं। इसलिए यहां भी ज्ञानी ने जो उपदेश किया है ऐसे प्रवर्तन करना, ये मर्यादा है। ज्ञानी के मार्ग का अनुसरण करो। वो लिखते हैं, चार वेद पुराण आदि शास्त्र सौ मिथ्यात्वना, मिथ्या दृष्टियों की रचना है, इसलिए मिथ्यात्व के शास्त्र कहे। लेकिन नानी ने ते ज्ञान भाषा एज ठेकाने ठरो, एमा भी मूल बात तो छे। केम के फाटो तो ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि से दूसरा पंथ दूसरे पंथ निकले, लेकिन कुछ तो उसने मूल बात को पकड़ करके विकृति में आए ने, तो जो मूल अंश रह गया है उनको समझो ना, विकृति को छोड़ दो। आपको किसी संप्रदाय के प्रति घृणा आएगी, जुगुप्सा नहीं आएगी। वर्तमान आगम में अमुक स्थल ज्यादा संदेह के स्थान है, वो जानते थे कि कितनी बात बहुत संदेह हो जाए ऐसी है, परंतु सत्पुरुष की दृष्टि से देखने से, ज्ञान दृष्टि से देखने से, ज्ञानियों की दृष्टि से देखने से, मैंने असली बात क्या है, गड़बड़ वाली का बात क्या है, तो उसका निराकरण हो सकता है। इसलिए उपशम दृष्टि से माने आत्मकल्याण की दृष्टि से वैसे आगम अवलोकन करने में संशय कर्तव्य नहीं। कोई भी संप्रदाय का आगम पढ़ो, आत्मकल्याण की दृष्टि साध्य होनी चाहिए। तो ऐसी बात है, इसलिए कहीं भी शंका करने की बात अवकाश नहीं है। हाँ, बहुत भक्ति, और अपने स्वाध्याय में भी चला है, और देवलाली में भी वो स्वाध्याय में लिया था, दिसंबर में देवलाली में ये पत्र का स्वाध्याय किया था।
आपके साथ कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आपने अपना अर्थ निकाला है, दूसरा कर दिया था, आपके साथ कोई ऐसा जोरदार आदमी संप्रदाय वाला ऐसा आर्गुमेंट नहीं करता है कि आपने अपना अर्थ निकाला तो बहुत नहीं, जोरदार आदमी
जोरदार होना तो चाहिए। दो दिन के पहले दोपहर के सत्संग में प्रतिबंध और स्वच्छंद की बात आई थी। पत्रांक 196 में कृपालु देव स्वच्छंद को टालने के लिए ज्ञानी की आज्ञा का आराधन और प्रतिबंध टालने के लिए सर्वसंग परित्याग कहते हैं। अब सर्वसंग की व्याख्या पत्रांक 334 में अखंडपने से आत्मध्यान के बोध मुख्यपने न रख सके ऐसा संघ कहा है, तो यह भी पत्रांक 196 में सर्वसंग परित्याग का अर्थ यही लेकर के पत्रांक 334 की व्याख्या के अनुसार चार प्रकार के प्रतिबंध को किस प्रकार से मिटाना। दो पत्र का रेफरेंस दिया है, एक 196 नंबर का पत्र है। लल्लू जी स्वामी पर का पत्र है, उसका मथड़ा ऐसा लिखा है, मुनिपणे रहना पड़ता है ऐसा जिज्ञासु। क्या लिखा है? आपकी भूमिका तो जिज्ञासु की है, साधु की नहीं है, लेकिन मुनिपणे रहना पड़ता है लोगों की दृष्टि में, लगता है कि ये सितंबर के स्वर्णकवासी के साधु हैं, लेकिन कौन कैसे हैं? जिज्ञासु है, संबोधन ही ऐसा किया है, मुनिपणे रहना पड़ते हैं ऐसे जिज्ञासु। जीव को दो बड़े बंधन हैं, एक स्वच्छंद और दूसरा प्रतिबंध। बंधन मैंने कर्म का बंधन होवे इसके कारण रूप परिणाम दो प्रकार के हैं, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। स्वच्छंद मिटाने की इच्छा जिसकी है उसको तो ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना चाहिए। जो अज्ञानी के आज्ञांकित रूप से प्रवृत्ति करता है उनको स्वच्छंद नहीं होएगा। और प्रतिबंध टालने की इच्छा जिसकी है उसको सर्वसंग से त्यागी होना चाहिए, ऐसा न हो तो बंधन का नाश नहीं होता है। स्वच्छंद जिसका मिटा है उसको जो प्रतिबंध है वो अवसर प्राप्त होने पर नाश होता है, इतनी शिक्षा स्मरण करने योग्य है। आपको व्याख्यान करना पड़े तो करना, क्या करना पड़े तो करना, अपनी इच्छा से नहीं करना, करना पड़े लोगों की मांग से तो करना, परंतु यह कर्तव्य की अभी मेरी योग्यता नहीं है, व्याख्यान करने की योग्यता मेरी नहीं है, उपदेश देने की मेरी योग्यता नहीं है, और यह मुझे प्रतिबंध है, क्या व्याख्यान करना वो भी मेरे लिए प्रतिबंध है? ऐसे समझते उदासीन भाव से करना तो भी उदासीन भाव से करना, न करने के लिए जितना अगले को रुचिकर और योग्य प्रयत्न था उतना करना, व्याख्यान नहीं करना पड़े तो अच्छा, और अगले को रुचि भंग नहीं हुए वहाँ तक वो प्रयत्न करना कि हमको प्रवचन नहीं देना है। फिर भी जब करना पड़े तो ऊपर लिखे अनुसार उदासीन भाव से समझ करके करना। तो उसमें जो प्रतिबंध की बात है उसमें खास करके लल्लू जी स्वामी को प्रवचन देने के जो प्रसंग था, उदय था, और प्रवचन देने की योग्यता नहीं थी, प्रवचन देने की योग्यता नहीं थी लेकिन उदय था प्रवचन देने का, तो वो नए प्रतिबंध में नहीं आ जाए, इसलिए उतनी मर्यादित बात की है। हाँ, समाज प्रतिबंध में जाता है तो उनके लिए कहा कि आपको किसी का संगी मत करो, दीक्षा तो ले ली है, तब समाज वाले का संग क्यों करते हो? देखिए होता है क्या, हमारे यहाँ दीक्षा तो ले ली है और समाज का घेरावा बढ़ जाता है उनको। पहले गृहस्थी था उतना संबंध नहीं है, अब तो गांव गांव में बैठकर अपना कल्याण करो, या तो साधु की संगति करो, लेकिन समाज वाले की संगति क्यों करते हो? वो आपको करने से फायदा नहीं है, नुकसान है, ये कहने का मर्यादित अभिप्राय है यहाँ पर। बहुत ज्ञानी पुरुष हो गए 334 में दूसरा पैराग्राफ है, उनमें अम्मा हमारे जैसा उपाधि प्रसंग और हमारी जैसी चित्त स्थिति, उदासीन, अति उदासीन चित्त स्थिति, ऐसा बहुत करके प्रमाण में कम ज्ञानी हुए हैं। ज्ञानी तो हुए हैं लेकिन हमारे जैसे ज्ञानी कम हुए, एकावतारी ज्ञानी को बहुत कम हुए हैं। कि एक और हमको व्यापार का उपाधि प्रसंग है, दूसरी ओर हमारी उदासीनता नहीं है, अतिशय उदासीनता है। उपाधि प्रसंग के कारण से आत्मा संबंधी जो विचार या परिणति अखंडपणे मैंने मुख्य रूप से नहीं हो सकता है, अथवा गौण रूप से होती है। ऐसा होने से बहुत समय प्रपंच मैंने व्यवसाय में रहना पड़ता है और उसमें तो अत्यंत उदास परिणाम हो गए होने से काल ज्यादा जाता है प्रवृत्ति में, व्यवसाय के प्रवृत्ति में। लेकिन हमारे अंदर की स्थिति क्या है कि अत्यंत उदास परिणाम हो गया है, इसलिए क्षण भर भी चित्त टिक सकता नहीं है। प्रवृत्ति दिन के बहुभाग में करते हैं लेकिन चित्त तो एक क्षण भी नहीं टिकता है वहां, इतनी हमारी उदासीनता वर्तती है। इसलिए ज्ञानियों ने सर्वसंग परित्याग करी अप्रतिबद्धपण विचरते हैं। यही कारण से ज्ञानी है वो व्यवसाय को, गृहस्थी को छोड़ करके, सर्वसंग परित्याग करके जंगल में जाकर के अप्रतिबद्ध विहारी हो जाते हैं। तो वहां मुनिपना की बात है, सच्चा मुनिपना की बात है। लल्लू जी स्वामी को बात किया है वहाँ मर्यादित बात है, यहाँ जो बात है वो एकदम मुनिपना की बात है। सर्वसंग परित्याग का शब्द का अर्थ, सर्वसंग शब्द का लक्षार्थ ऐसा है कि उसमें हमारा जो कहने का लक्ष्य मैंने अभिप्राय है वह ऐसा है कि अखंड रूप से आत्म ध्यान के, अखंड रूप से आत्मबोध मुख्य रूप से न रख सके, ऐसा जो संघ है ऐसा सर्वसंग छोड़ देना चाहिए। मतलब साधु का संग करे, ज्ञानियों का संग करे, उसमें कोई बाधा नहीं है। आत्मबोध और आत्म ध्यान में बाधा पहुंचे ऐसा संघ हमें नहीं करना, ऐसा सर्व प्रकार का संघ हमें नहीं करना चाहिए, यही कहने का अभिप्राय है। यह हमने संक्षेप में लिखा और उस प्रकार से, उस प्रकार को बाह्य से और अंदर से भजते हैं, उसका ही अंदर बाह्य भजन चलता है, जैसा लिखा है वैसा ही चलता है। हाँ हाँ, वो सुभाष भाई को लिखा है। हाँ, अंतरंग दशा की बात अधिक से अधिक अच्छी और ज्यादा से ज्यादा सुभाष भाई के पत्र में मिलती है। देखिए उनका पुरुषार्थ कितना है, देह रह जाए फिर भी, देह छता देह होने पर भी मनुष्य पूर्ण वितराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है, ऐसा हमारा निश्चय है, ऐसा नहीं लिखा है, हमारा अनुभव बोलता है कि आयुष्य रह जाएगा हम पूर्ण वितराग हो सकते हैं, हमारा अनुभव बोलता है आत्मा में स्थिरता रह कर सकते हैं, क्योंकि हम भी निश्चय से वही स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अखंड रूप से बोलता है। ये हमारी आत्मा की आवाज है कि हमारा भी ऐसा ही होगा, देह रहने पर भी हम पूर्ण वितराग हो जाएंगे एक दफे, तो क्योंकि हम आत्मस्थिरता कर सकते हैं और करेंगे भी। ऐसा हमारा आत्मा अखंड रूप से कहता है और ऐसा ही है, जरूर ऐसा ही है, पूर्ण वितराग की चरण रज निरंतर हमारे मस्तक पर रहो, ऐसा रहा करता है। ये अभिमान से नहीं लिखा है, पूर्ण वितराग की तो चरण रज हम मस्तक पर रखने के लिए तैयार है। मतलब पूर्ण वितरागता मैंने क्या बात है वो हमारे ध्यान में है, जिम्मेवारी से लिख रहे हैं, ऐसे फेंकते नहीं है, ऐसी बात है। अत्यंत विकट ऐसा वितरागत्व अत्यंत आश्चर्यकारक है, चमत्कारिक है, तथापि यह स्थिति प्राप्त होती है, सदैव प्राप्त होती है, ऐसा निश्चय है। प्राप्त करने पूर्ण योग्य हैं हम, प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है। सदैव ऐसे पूर्ण वितराग हुए बिना हमको जो उदासीनता आई है वो मिटे ऐसा मालूम पड़ता नहीं, हमारी उदासीनता छूटेगी नहीं, पूर्ण वितराग होते होगी, होकर के रहेंगे। और ऐसा होना संभवित है, जरूर ऐसा ही है। देखो क्या आत्मविश्वास है, क्या आत्मविश्वास है, अपना पुरुषार्थ के साथ अनुभव के साथ आत्मविश्वास कितना है, देखने लायक बात है।
दोनों पत्रों में संदर्भ अलग अलग होंगे,
हैं वो तो दोनों का संदर्भ अलग अलग, एक बात नहीं है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है, पत्रांक 400 के हेडिंग में ते पुरुष नमन करवा योग्य छे, ऐसा करके कीर्तन करने योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है, ऐसा करके लिखा है 400 नंबर के हेडिंग में। તે પુરુષ નમન કરવા યોગ્ય છે, કીર્તન કરવા યોગ્ય છે, પરમ પ્રેમ સે ગુણગ્રામ કરને યોગ્ય હૈ, ગુણગાન કરને યોગ્ય નહીં હૈ, પરમ પ્રેમ સે ગુણગાન કરને યોગ્ય હૈ, બાર બાર ફરી ફરી વિશિષ્ટ આત્મ પરિણામ સે ધ્યાવન કરને યોગ્ય હૈ, आत्म परिणाम से उसका ध्यान करने योग्य है। कि जो पुरुष से वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से किसी भी प्रकार का प्रतिबद्धपना वर्तता नहीं है, जो अप्रतिबद्ध विहारी है, ऐसे जो महात्मा है कि जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे महापुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेम से गुणगान करने योग्य है, और बार बार विशिष्ट आत्म परिणाम से, आत्म परिणाम से नहीं, विशिष्ट आत्म परिणाम से ध्यावन करने योग्य है। कितना बहुमान है, अवैध भक्ति। यहाँ जो प्रतिबद्धपण ज्ञानी को वर्णन किया है, उसकी मेलवणी बराबरी प्रकारना प्रतिबंध साथे, उसकी मेलवणी चार प्रकारना प्रतिबंध साथे कई रीते करवी, यहाँ जो बात लिया है वो मुनि दशा के बात लिया है, अपने को मुनि दशा की भावना है और मुनियों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं होता, वो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। प्रवचन देना भी प्रतिबंध है, वो इसमें ये बंधन में आते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महामुनिराज के शिष्य राजा महाराजा होते हैं, क्या राजा महाराजा भी इनके शिष्य होते हैं और वो उनको सुनने को, उपदेश लेने के देने लेने के लिए आते हैं, लेकिन मुनिराज इसके साथ बंधे हुए नहीं है कि महाराजा साहेब पधारे हैं इसलिए मुझे उपदेश देना पड़ेगा, वो बात नहीं है। इनके मन में आया, उपदेश का विकल्प आया तो उपदेश देंगे, अगर उपदेश का विकल्प नहीं आया तो बैठे रहेंगे मौन, जहाँ तक बैठना है बैठेंगे, चलना हो तो चल जाएंगे, वो बंधे हुए नहीं है। तो वहाँ ऐसी बात है, इस प्रकार की बात है।
चार प्रतिबंध,
नहीं नहीं, वो चार प्रकार के प्रतिबंध जो है वो मुमुक्षु के लिए बात है। मुमुक्षु दशा में वो चार प्रकार के प्रतिबंध टलने से ज्ञानी पुरुष के पहचान होने की योग्यता आती है, वो बात तो मुमुक्षु दशा की है। और यहाँ जो अप्रतिबद्ध विहारी की बात है वो मुनि दशा की है, दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। और कोई प्रश्न हो तो ના અલગ અલગ છે ને, અહીંયા પ્રતિબદ્ધ એટલે અહીંયા દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવનો કોઈ બંધન, પ્રતિબદ્ધ એટલે બંધન નથી। મુનિરાજને દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવનું કોઈ બંધન નથી એમ કહેવું છે। અને ઓલો જે પ્રતિબંધની વાત આવે છે એ મુમુક્ષુ દશામાં સમાજ પ્રતિબંધ, કુટુંબ પ્રતિબંધ, શરીર પ્રતિબંધ કે સંકલ્પ વિકલ્પ પ્રતિબંધ હોય છે ત્યાં સુધી એને મુમુક્ષુતામાં અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે મુમુક્ષુ દશાની એ વાત છે ને। અહીંયા છે મુનિ દશાની વાત છે, બે વાત જુદી જુદી છે સાફ। સુગાની જી કો કપડે કી મિલ માલિકો કે સાથ અપના કામ થા, તો કુછ એક મિલો કે એજન્સી લેકર કે ઉનકે કપડે બેચતે થે, ગાંઠ બંધ થાન કે થાન નહીં। હા, કપડા ખુદરા તો નહીં, પરચુરણ કપડ તો નહીં, તાકાબંધ ભી નહીં, પૂરી ગાંઠ। હા, એસી પ્રકાર કે હોલસેલ એજન્સી મિલ વાલો કે સાથ થે, તો મિલ માલિકો કે સાથ ઉસકી ઉઠ બેઠ થે। ઉસમેં એક મિલ માલિક કે સાથ ઉનકે એસા પ્રસંગ બના, તો મિલ માલિક કો માલૂમ પડા કે યે જો નિહાલચંદ જી હૈ કોઈ ધર્મ કે લાઇન મેં અચ્છે જાણકાર હૈ। तो उसने एक दिन उसने ऐसा बोला कि ऐसा करो सुगानी जी, आप बार बार हमारे यहाँ आया करो और हमको भी धर्म समझाया करो। तो वो उनके साथ व्यावसायिक काम था, वो कमीशन देते थे मिल मालिक लोग उनको, उनके कपड़ा बेचने से पर उनका कमीशन लगता था। फिर भी वो उतने निष्प्रह थे कि उन्होंने मना कर दिया कि देखिए मेरे तो थोड़ा रोटी का प्रयोजन है इसलिए मैं आपके पास आता हूँ, कोई धार्मिक प्रयोजन से नहीं आता हूँ, तो मेरे को आना पड़ता है, रोटी का प्रयोजन है व्यवसाय का इसलिए मुझे आना पड़ता है, बाकी मेरे पास समय ही टाइम ही कहाँ है कि मैं दूसरे को समझाने के लिए जाऊँ। ના બોલ દિયા, હમ નહીં આ સકતે, હમારે પાસ સમય નહીં હૈ, ઉતને ભી શરમ નહીં ભરી कि वो अपने को कमाई करके देता है तो चलो अपन थोड़ा सर्विस दे दें, कि नहीं वो बात व्यवहार की है, संसार की है, वो संसार की मर्यादा में रखो, धर्म के क्षेत्र में उस बात को बीच में लाना नहीं है। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति से वो कोई पैसे की या किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखने वाले नहीं थे। ज्ञानी निष्प्रभ होते हैं, इनका यह सबूत है कि ज्ञानी निष्प्रभ होते हैं। हाँ, और मुमुक्षु दशा में से ये बात पैदा होती है। मुमुक्षु दशा में भी निष्प्रता आते से ज्ञानी निष्प्रह रहते हैं। मुमुक्षुता में वो निष्प्रता का गड़तर होता है। उत्कृष्ट मुमुक्षु है वो भी निष्प्रह होते हैं। हाँ, तब ज्ञानी थे वो, तो अजमेर में रहते थे तभी ज्ञान दशा आ गई थी, बाद कलकत्ता आए हैं। फिर तो वतन छोड़ करके आजीविका के कारण से अजमेर छोड़ करके कलकत्ता आना पड़ा, क्योंकि ज्ञान दशा तो उसके पहले अजमेर में हो चुकी थी। ऐसा है कि देखा होगा कि भाई इनको कोई फायदा होने वाला तो दिखता नहीं है, इनकी वर्तमान परिस्थिति देख करके इनकी योग्यता का नाप आ गया होगा। उसको ज्ञान कहाँ से चढ़ेगा? अगर पात्र होता, वो जीव अगर पात्र होता तो क्या बोलता उसकी जगह? वो मिल मालिक पना नहीं रखता कि तुम आया करो, अच्छा आपका दिनचर्या कैसी है, आपको निवृत्ति कब रहती है, हमको आना है आपके पास, कहाँ आए, कब आए, आपको आप कृपा करके हमको भी कुछ समझाइए, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन हम आपको पैसा देते हैं इसलिए आप हमारे पास आया करो, उसमें कोई ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है, उसमें कोई उपदेश लगने वाला नहीं है। हाँ, तो बात उल्टी हो गई ना। जिससे ज्ञान लेना है उसको ऑर्डर करना है कि तुम हम क्या बोलो ऐसा करो। ऐसे ज्ञान प्राप्ति किसी को होती हाँ बोल दृष्टांत दिया ने अपने स्फटिक मणि का, दर्पण का और स्फटिक मणि का दृष्टांत दो दिए थे। स्फटिक मणि है वो लाल दिखता है तब भी उसकी पारदर्शकता का अभाव नहीं हुआ है, लाल होने का कारण भी पारदर्शकता है तब लाल हुआ है। और लकड़े का दृष्टांत दिया था कि ये लाल क्यों नहीं होता है, इसके पास लाल रंग का कपड़ा रखने से ये क्यों लाल नहीं होता है। इस तरह से भले ही लालपना दिखता है लेकिन पारदर्शकता की अवस्था वहाँ मौजूद है। उस तरह ज्ञान में भी अनेक ज्ञेयाकार दिखता है फिर भी वहाँ ज्ञान सामान्य की अवस्था मौजूद है। वो वाले हाँ, वो उत्तरंग पहलू की बात है, वो अंतरंग पहलू की बात, और सभी को होता है। और टीवी का पर्दे का और दृष्टांत है, पर्दा तो पर्दा रहता है, उस पर पिक्चर आता है और चला जाता है, पर्दा ऐसा क्या वैसा रहता है, पिक्चर आने से पर्दा ऐसा नहीं हो जाता है। मूल पर्दा अपनी अवस्था का त्याग किए बिना अनेक प्रकार की अवस्था धारण करता है क्या नहीं? हाँ, लेकिन पर्दे को कुछ होता नहीं है। अरे वो ओनिडा वाला तो फोड़ के बताता है, उसकी ट्यूब को फोड़ देता है, है? टीवी में टीवी की ट्यूब ट्यूब को फोड़ते हैं, आता है कि नहीं आता है? ये वो ट्यूब को कुछ होता नहीं है, ऐसी बात है।